विश्व के इतिहास में कई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कई बहुत सुंदर, दिलचस्प और महत्वपूर्ण भी हैं। पर आज आपके सामने जिस कहानी व कथा को लेकर हम आए हैं, यह कथा वास्तव में कथा नहीं, महाकथा है, महागाथा है। ये इसमें एक साधारण वृद्ध मनुष्य, जो कि जीवन के अनुभव से संपन्न है, उनके जीवन में आए हुए अलौकिक परिवर्तन के कुछ अंश आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यह महागाथा कुछ मिनटों में दिखाना मात्र असंभव है। इसीलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाकर मानवीय जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने में इसकी महत्ता अधोरेखित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसकी महत्ता का लाभ स्वयं तक सीमित न रखकर विश्व के सभी स्वपरिवर्तन के इच्छुक भाई बहनों के साथ आदान प्रदान करते हुए विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान करके विश्व सेवा का पुण्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ घाटकोपर सब जोन डोंबिवली सेवा केंद्र प्रस्तुत करता है संपूर्ण मानवता के मसीहा प्रजापिता ब्रह्मा। शिवांजलि यह एक कुमारी है जो अनन्य कृष्ण भक्त है। उसे आभास हो रहा है कृष्ण भगवान अभी जल्द ही उनको मिलने वाले हैं। आजकल वैसे ही स्वप्न भी वह देखती रहती है। क्या सचमुच कृष्ण भगवान से मिलेंगे? चलिए देखते हैं।
शिवांजलि, शिवांजलि।
बोलो सलोनी, क्या बात है?
अकेले में क्या कर रही हो?
इंतजार कर रही हूँ।
किसका? शिवांजलि, आज तो जन्माष्टमी है ना, किसका इंतजार हो रहा है बताना?
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कृष्ण भगवान मुझसे मिलने आने वाले हैं।
आहा, क्या बात है, आप तो कलयुग की संत मीरा जो ठहरी। तो ये संत मीरा बाई आज कृष्ण भगवान से मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, मिल लेना, मेरा भी प्रणाम देना उनको, मैं जा रही हूँ। बाय
बाय सलोनी।
कौन आएगा? शिवांजलि तो कृष्ण भक्त है, हम जिसे चाहते हैं, जिसे बहुत याद करते हैं, उनका स्वप्न में आना तो सामान्य बात है। लेकिन यह शिवांजलि के साथ क्या हो रहा है? उसे तो श्री कृष्ण और बूढ़ा बाबा दोनों दिखाई दे रहे हैं। भला ऐसा क्यों? कभी श्री कृष्ण, कभी बूढ़ा बाबा, क्या राज है इसका?
गुड मॉर्निंग शिवांजलि।
गुड मॉर्निंग सलोनी।
किसका चित्र बना रही हो? क्या हुआ, मिले क्या आपको आपके कृष्ण भगवान?
हाँ, लेकिन मैंने कल कृष्ण भगवान के साथ झूले पर एक बूढ़े बाबा को देखा जो बहुत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उनका चित्र बनाने का प्रयास कर रही हूँ।
दिखा तो सही।
ये देख।
मालूम होता है ये चित्र कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। इनका परिचय मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्राप्त हुआ था।
अच्छा, मुझे ले चलोगी? मैं भी जानना चाहती हूँ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। शांति दीदी।
ओम शांति। सलोनी कैसी हो? आओ आओ, सहेली को भी लेकर आई हो?
हाँ दीदी, ये मेरी दोस्त है शिवांजलि।
वेलकम, आओ बैठो।
सलोनी शिवांजलि को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था आ गई है, जहाँ वह स्वयं को हुए अनोखे अनुभव टीचर दीदी को बताकर ब्रह्मा बाबा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती है। शिवांजलि का अनुभव सुनने के बाद दीदी चित्र में दिखाए हुए तेजस्वी वृद्ध मनुष्य की अद्भुत गाथा का रहस्य धीरे धीरे समझाती हैं। कुछ ही दिनों में शिवांजलि इस रहस्य को पूरी तरह समझ जाती है, क्योंकि आध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना पड़ता है। क्या है यह रहस्य? यह कहानी है ब्रह्मा के रात्रि के अत्यंत अंधकारमय पल की। लोग अज्ञान निद्रा में विकारों में वशीभूत मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे वातावरण में हैदराबाद के सिंध में एक निराले व्यक्ति थे, जिन्हें स्नेह से लोग दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज कृपलानी था। सन 1876 में एक गांव के विनम्र स्कूल मास्टर के घर में दादा लेखराज कृपलानी का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार लेखराज का पालन पोषण हुआ। बहुत छोटी उम्र में अनेकानेक काम करने के बाद उन्होंने हीरे जवाहरातों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक हीरा विक्रेता के रूप में बाद में बहुत नाम कमाया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वे एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध बहुत से राजाओं से था। उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था, इसीलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवास हैं। दादा बाल्यकाल से ही नारायण के अनन्य भक्त थे। दादा की अपने गुरु में भावना भी थी। उन्होंने कुल 12 गुरु किए थे। सन 1936 में उनके उम्र के उस पड़ाव में जब सामान्यतः सभी लोग सेवानिवृत्ति की तैयारी करते हैं, तब उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में एक सक्रिय और आकर्षक पड़ाव में प्रवेश किया। दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई और अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। गहरी आध्यात्मिक समझ और साक्षात्कारों की श्रृंखला उनके जीवन में शुरू हुई। विष्णु चतुर्भुज, ज्योतिर्लिंगम शिव तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। जिनकी आंखों से कभी किसी ने आंसू नहीं देखे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी। वह कहने लगे, बस कीजिए प्रभु इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, अतः उन्होंने व्यवसाय को समेटना प्रारंभ किया। उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्फ को हुआ रेल का राही। ऐसा तार देखकर लगता था पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। आगे चलकर उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उसी के एक सप्ताह अंदर दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुजम ततत्वम। इन साक्षात्कारों से दादा को बहुत हर्ष हुआ। और अब विश्व के इतिहास की एक सर्वोत्तम घटना की ओर समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन दादा के घर में सत्संग चल रहा था। आप दादा के जीवन का वह समय देख रहे हैं जब उनकी भक्ति सर्वोच्च स्तर की सीमा पर थी। भोलेनाथ शिव अब अधिक देर नहीं कर सकते थे। अपना आकाश सिंहासन छोड़कर धरती पर आने के लिए मानो प्रभु भी बंध गए थे। भागीरथ के पुरुषार्थ की विजय का नजारा विश्व के इतिहास के पन्नों पर नूंद होने जा रहा था। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सभी के रचयिता का उस सातवें आसमान के सिंहासन को छोड़कर इस धरा पर आने का समय अब अति निकट पहुंच गया था। जिसका अज्ञान निद्रा में सोए हुए किसी भी मनुष्य को खबर नहीं थी। और अचानक देखिए क्या होता है। उनकी जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि दादा सत्संग आधे में छोड़कर चल पड़े। कोई कुछ समझ नहीं पाया। वह अपने कमरे में जाकर बैठे, उनके नेत्रों में लाली दिखाई देने लगी, जैसे कोई बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा एकदम लाल था, उनका कमरा भी प्रकाशमान होने लगा। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई और बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हुई। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नैन बंद हो गए। इस घटना के बाद दादा सोचने लगे, वह कौन था, वह कौन सी शक्ति थी जो मुझे इस प्रकार ज्ञान युक्त साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे क्या रहस्य है। धीरे धीरे दादा को यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया था, और उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब उन्हें निश्चय होने लगा, मैं यह देह नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। वह सभी को कहते, तुम आत्मा हो। फिर उन्होंने यह तपस्या आरंभ की। उनके घर में जो सत्संग चलता उसमें ओम की ध्वनि होती थी, उस पर सभी प्रभु का ध्यान करते थे। उसी से सभी उन्हें ओम बाबा कहने लगे, और यह सत्संग ओम मंडली के नाम से पहचाने जाने लगा। जो भी सत्संग में आते उसे श्री कृष्ण, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का साक्षात्कार होने लगा। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। जिस भगवान से मिलने की आस दिल में सदियों से थी, वह अब पूरी हुई। दूर देश का रहने वाला परदेशी प्रभु अभी अपने देश आ गया हो, ऐसा अनुभव होने लगा। जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आईं, उनके जीवन में सहज रूप से सादगी आ गई। खान पान पर भी उनका कंट्रोल हुआ। विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरूतियों को, जिन्हें कि कोई अन्य नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहू बेटियों और माताओं को सत्संग में भेजने लगे। इस सत्संग में एक दिन एक विशिष्ट कुमारी का आगमन हुआ। जिनका नाम राधे था, वह बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर साकार हुई हो। प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वह वीणा वादन में कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। अनेक माताओं ने लोकलाज कुरूतियों को छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। उनके चेहरे पर से दुख दर्द की रेखाएं खत्म होने लगी, अलौकिक मुस्कान छाने लगी।
बना के मुझको
दादा अब अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को चैरिटी बिगिंस एट होम की उक्ति में विश्वास था। सदियों बाद बिछड़ा हुआ प्रभु परिवार तथा एक एक रत्न अभी नजदीक आने लगे। सभी गोप गोपियां सत्संग में आने वाली भाई बहने खुशी में झूमते रहते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी पर पड़ती थी। उनके मुख से सभी के प्रति बेटा बेटी ऐसे मधुर शब्द निकलते थे। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा ने जब सत्संग का विकसित रूप देखा और परमात्मा की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग का अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए ऑनररी इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ साथ 8-10 अन्य ज्ञान निष्ठ कन्याओं माताओं की एक मैनेजिंग कमेटी बनाकर अपना समस्त धन और संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दिया। आने वाले सभी विघ्नों में बाबा सदा निश्चिंत अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे, हम तो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। उनके इस शांति और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अड़िग रहकर अन्य सभी माताएं बहने तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। हैदराबाद से फिर कराची में स्थानांतरित होने के बाद बाबा ने सभी बच्चों के आवास निवास की व्यवस्था की थी। वहां छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे अच्छे बंगले ले लिए गए थे। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा बॉयज भवन, चौथा प्रेम भवन और 5वां राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। आगे चलकर शिव परमात्मा ने दादा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा ओम राधे का नाम यज्ञ माता सरस्वती रखा। हर एक बहन और भाई को कोई न कोई जिम्मेदारी दी गई थी, जैसे कि वस्त्रों की धुलाई, यज्ञ की मोटरों साइकिलों आदि की सफाई मरम्मत आदि भी यज्ञवत्स स्वयं ही करते थे। अनाज को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। ब्रह्मा बाबा स्वयं ही सबसे पहले हर एक सेवा में हाथ डालते थे। छोटे से छोटे कार्य में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके वृद्ध आयु में इस सेवा भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि बाबा अपने कोमल हाथों से कोई मेहनत का कार्य करे, परंतु बाबा सभी को यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे और सभी प्यार से रुचि से हर यज्ञ सेवा निरहंकारी भाव से करते थे। देखिए कितने महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं ये, जिन्हें परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के द्वारा अलौकिक पालना मिली। ऐसे अनुभव हो रहा है मानो जन्म जन्म का साथ हमारा जिस प्रभु और प्रभु के परिवार से है वह पुनः एक बार फिर से मिलने की खुशी में मन आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा है।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए,
जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा,
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
चौदह वर्ष तक बाबा ने 350 से अधिक लोगों के संगठन को ईश्वरीय आदेश अनुसार प्रशिक्षण दिया। लगभग 3 वर्ष के पश्चात 1950 में ईश्वरीय आदेश अनुसार ओम मंडली कराची से भारत के माउंट आबू में स्थानांतरित होने के लिए रवाना हुई। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षा भी है।
Ah.
भारत में आबू आने पर यहाँ संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। इस ईश्वरीय संदेश को संपूर्ण भारत और विश्व में फैलाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने सभी को प्रेरित किया। निडर माताओं और कन्याओं ने अकेले ही कई शहरों में जाकर इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार किया। जल्द ही यह संदेश संपूर्ण भारत में फैल गया। अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र स्थापन हुए। धीरे धीरे तपस्या भूमि मधुबन बाबा से मिलने ब्रह्मा वत्स आने लगे और अलौकिक प्राप्तियों की अनुभूति करने लगे।
के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। ना में कोई ना आता, कोई ना आता हो,
कोई ना आता हो।
माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
चौबीस जून 1965 में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अपना देह त्याग किया। अब ब्रह्मा बाबा ने भी अपने साकार रूप में कर्तव्य समेटना शुरू किया। उनकी अवस्था देह में रहते विदेही नजर आती थी। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अपना देह त्याग दिया। उन्होंने साकार रूप से बच्चों को अंतिम तीन वरदान दिए। बच्चे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका नियुक्त हुईं और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाबा का साकार माध्यम बनी दादी गुलजार, दादी हृदय मोहिनी जी। आपके स्वभाव में गंभीरता एवं अंतर्मुखता के साथ आपकी मधुर मुस्कान हम सभी को नजर से निहाल कर देती है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता सरलता, निर्मलता, पवित्रता है। इन गुणों के आधार पर स्वयं बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा दादा ने आपको अपना रथ बनाना स्वीकार किया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद के पाठ को वही समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में आध्यात्मिकता को रुचि से और गहनता पूर्वक अध्ययन किया हो। शिवांजलि जैसी आत्माएं जो साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद इस ज्ञान को समझने लगी, उन्हें भी ब्रह्मा बाबा की पालना का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मा बाबा आज भी अपना नई सृष्टि की स्थापना का कार्य सूक्ष्म अव्यक्त रूप से कर रहे हैं।
हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी, आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी, आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके।
अव्यक्त बाबा अपनी दोनों बाहें खोलकर बच्चों के इंतजार में वतन में बैठे हैं और बच्चों के दिलों में यही गीत बजता रहता है।
आबू का तीरथ तुमको पुकारे, मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना